महाबंध पुस्तक पहिली लेक्चर नंबर एक ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोए सौवसाहूणं बारह अंग गिच्छा वियलिय मलमूढ दंसनुत्तिलया विविहवर चरण भूसा पसियौ सुयदेवया सुइरं जयौ धरसेननाहो जैन महाकम्मणिपाहुडसेलो बुद्धिशिरेणोद्धरियो समप्यो कुह्वयन्तस्स पणमः कय भूय बलिम् भूय बलिम् केशवास परिभूय बलिम् विनिहय बम्म पसरम् वड्ढाविय विमलनान बम्म पसरम् भूतबलि प्रणितं तं बन्धतत्व प्रकाशकं महाधवल विख्यातं महाबन्धं नमाम्यहं सिद्धानां कीर्तनात् अन्ते यः सिद्धान्त प्रसिद्धवाक् सोऽनाद्यनन्त सन्तानः सिद्धान्तो नोऽवताचिरं जिणवयणमोऽसहमिणं विषयसुहविरेयणम् अमिदभूयं जरमरणबाहिहरणं हयकरणं सौवदुःखानम्। आज से हम यहाँ महाबंध का स्वाध्याय शुरू कर रहे हैं। ये तो भूतबलि आचार्य से रचित यह ग्रंथ रचना है जिसको हम षटखंडागम कहते हैं। पुष्पदंत और भूतबलि आचार्यों की जो रचना कहते हैं यह छठा जो खंड है वो भूतबलि आचार्य की रचना है। एक बात, पहले पांच खंडों पर जो टीका है वो 16 पुस्तक है धौला के, उसमें अलग अलग खंड पर अलग अलग जो हमने देखा ना वेदना खंड है तो उसमें हमने ये 16 पुस्तकें कल तक हमने पढ़ ली। अब यहाँ महाबंध नाम का जो छठवां खंड है उसकी यहाँ शुरुआत करते हैं। बहुत अनेक सालों से ये अनुपलब्ध था, मूढ़ बिदरी के शास्त्रागार में तो था परंतु वो बाहर स्वाध्याय के लिए उपलब्ध नहीं था। उसके बारे में थोड़ा परिचय लेकर हम आगे बढ़ेंगे। वैसे यहाँ जो कहेंगे प्रस्तावना बहुत बड़ी है, हम पूरी नहीं पढ़ेंगे पर आप पढ़ सकते क्योंकि 114 पेज वाली तो प्रस्तावना है। तो यहां से हम शुरू करते हैं जहां समर्पण लिखा है ना स्टार्टिंग में। ये पंडित सुमेरु चंद्र भूतबलि आचार्य की ओरिजिनल रचना है। आइए भाई बैठिए, और भी उनको बैठने के लिए वो देना उनको अगर से। चलेगा कोई भी डाल। देखिए कल तक हमारा धौला का स्वाध्याय चल रहा था, आज से हम यहाँ थोड़ा आगे चल के बैठे। हाँ वो पीछे बैठेंगे ना बहन, थोड़ा आगे से। हाँ ठीक है, उनके साथ आप देख भी सकते पुस्तक। ये महाबंध नाम का जो हमारा षटखंडागम का छठा खंड है, आपका कितना अभ्यास है मुझे मालूम नहीं है परंतु जिसको हम षटखंडागम कहते हैं, ओरिजिनल जो भूतबलि आचार्य की और पुष्पदंत आचार्य की रचना थी यानी हमारे जिनागम के ओरिजिनल जिसको प्रथम श्रुतस्कंद कहते हैं, समयसार वगैरह तो बाद में हुए, ये तो उसके बहुत पहली रचना हुई थी। तो उसमें से 6 नंबर का खंड है। पहले जो 5 खंड है उसके ऊपर टीका लिखी थी वीरसेन आचार्य ने, उसको हम धौला कहते हैं। उसके तो 16 भाग हमने पढ़ लिए। अभी हमारा सेकंड टाइम ये महाधौला का शुरू हो रहा है। पहले हम दसवीं साल में हमने ये दिए शुरू किया था 2010 में। अभी यहाँ हम जो पढ़ रहे हैं इसके लिए कितने कितने लोगों ने कितना कितना योगदान दिया है उसको पूरा पढ़ना है तो हम पूरी प्रस्तावना पढ़नी चाहिए, वो तो आप पढ़ लेना, परंतु उसमें से मुख्य बिंदु मैं आपको बताना चाहती हूँ। शुरुआत में जहाँ समर्पण लिखा है एकदम स्टार्टिंग में, ये जो सुमेरु चंद्र दिवाकर जिन्होंने इस पहले भाग का संपादन भी किया है उनके अथक परिश्रम से ये बातें बाहर आ गई, नहीं तो उसके पहले भी बहुत लोगों ने बहुत ट्राई किया था, परंतु ये ग्रंथ बस दूर से देखने मात्र के लिए अवेलेबल थे, वो तो कोई उस पर ना स्वाध्याय कर सकता था ना कुछ। अब इसके बारे हम यहाँ पढ़ेंगे। ये आचार्य शांति सागर जी महाराज हुए उनके निमित्त से ये सब उपलब्ध हुए हैं, और इन ग्रंथों को ताम्रपट पर उत्कीर्त करके फल्टन नाम में वहाँ तो एक सिद्धांत मंदिर ही बनाया है। हाँ, ये सब ओरिजिनल उसमें ताम्रपट पर खुदवाए हैं सारे, हमने देखे भी है उसको वहाँ पर। वैसे आचार्य श्री से भी हमने बचपन में बहुत यानी बहुत बार उनसे मुलाकात हुई थी। देखो ये समर्पण पढ़ते हैं, जिन्होंने समीचीन श्रद्धा आत्मविज्ञान और दुर्धर सकल संयम से समलंकृत हो विषयासक्त विश्व को अपने विमल जीवन द्वारा आदर्श दिगंबर श्रमणचर्या का दर्शन कराया। ये शांति सागर महाराज के लिए ये शब्द है सारे। जिन्होंने अपने आत्म तेज और प्रशस्त अध्यवसाय द्वारा भव्यात्माओं के अंतकरण में रत्नत्रय की दिव्य ज्योति प्रदीप्त करते हुए उन्हें श्रेयो मार्ग में संलग्न कराया। श्रेयो मार्ग कहो मोक्ष मार्ग कहो एक ही बात है। जिन्होंने परम पूज्य महाबंधादि आगम ग्रंथों के, ये महाबंध आदि, महाबंध है, धवला है, जय धवला है, वो सब आगम ग्रंथों के संरक्षण हेतु उन्हें ताम्र पत्र पर उत्कीर्ण कराया। ये तो पेपर पर तो ठीक है, मैं ताम्र तांबे के जो ऐसे पत्ते बना के उसमें ये सब खोदी हुई है। जिनवानी की चिरस्मरणीय सेवा की तथा जनसाधारण में सम्यक ज्ञान के प्रसार हेतु उपयोगी ग्रंथों को मुद्रित करवाकर अमूल्य वितरण कराया। जिन्होंने अपने नेत्रों की ज्योति मंद होने पर अहिंसा महाव्रत के रक्षणार्थ वैयावृत्य रहित इंगिनी मरण रूप उच्च संलेखना को धारण कर इस दुष्म काल में 36 दिवस पर्यंत आहार त्याग कर परम शांति पूर्वक आदर्श समाधि मरण किया। मुझे याद इंगिनी मरण यानी वो तो संलेखना मरण, किसी से उन्होंने पर्यावृत नहीं करवाया था, और ये बात बनी थी मैं 6th क्लास में थी, छप्पन मैं छठवीं में थी, मैं छठवीं में थी, हाँ वही वही, हाँ 1956 ही होगा क्योंकि मैं 6th क्लास में थी, मुझे याद है कुंतलगिरी में, हाँ मैं तो नहीं गई थी, मेरी माँ गई थी, परंतु मुझे याद है वो पूरा उनका अंतिम जो उपदेश है वो भी प्रिंटेड और बहुत उत्कीर्ण किया है, हमने बहुत बार पढ़ा भी। जिनकी उच्च तपस साधना तथा अपूर्व आत्म तेज से शरीर पर लिपटने वाले भीषण सर्पराज भी बाधाकारी न हुए तथा व्याघ्र आदि क्रूर वन्य पशु जिनके पार्श्व में आकर प्रशांत बने, उनके बहुत सारी ऐसे केवल कथाएं नहीं है जो एक्चुअली बनी थी, ऐसी बातें है, क्योंकि कभी ऐसे गांव में तो रहते नहीं, जंगल बाहर ही रहते थे, और उनके बहुत ऐसे कभी कभी तो सर्पों ने लपेटा था, कभी व्याघ्र आकर बैठते थे, कई तो कहते कि अन्य भी व्यंतर आदि भी उनके आगे चलते थे उनको भी, मगर बहुत उच्च साधक थे। उनके सामने तो ये भी बात आई थी, जब मस्वर नाम का गांव है मेरे नाना जी के यहाँ, वहाँ पंचकल्याणक था, और वही नदी के उस पार वहाँ वन में उनका निवास होता था, तो बहुत सारे लोग आए थे कि कांजी कौन है, वो ऐसा ऐसा कहते हैं, वैसा कहते हैं, आप ऐसा फरमान निकालो, उसका निषेध करो। तब उन्होंने बताया था, मेरे सामने अगर समय सार रखेंगे तो मैं भी यही बात बताऊंगा जो उन्होंने बताई है, और उनके वो चरित्र में भी लिखा है। शांति सागर महाराज का चरित्र जो पुस्तक प्रसिद्ध है उसमें भी ये बात लिखी, और ये जो बात हुई थी मेरी माँ उनके सामने थी, यानी उनके सामने ये सब अनुवाद यानी उनके भाषा हुई थी। उन भय विमुक्त आध्यात्मक चूड़ामणि चारित्र चक्रवर्ती साधु रत्न 108 आचार्य श्री शांति सागर महाराज की पावन स्मृति में ये उन्होंने समर्पण किया है। ये जो स्वयं सुमेरु चंद्र दिवाकर है उन्होंने ये पहली पुस्तक की संपादन किया है। अभी मैं थोड़े कुछ बिंदु आपको बताऊंगी, बाकी तो आपको विस्तार से पढ़ना है इसमें से। देखो ये प्रस्थानों का तो 33 नंबर का पेज, और उसके बीच वो प्राक कथन है ना, वो प्राक कथन में भी वो बहुत विस्तार से कैसे कैसे क्या क्या उनके कठिनाई आई थी और कैसे कैसे उन्होंने उन लोगों के साथ व्यवहार रख कर ये प्रतिलिपियां बनाने के लिए और वो ग्रंथ बाहर आने के लिए सहाय किया था, उसकी बात उसमें बहुत विस्तार से बताई है। अब यहाँ हम देखते 33 नंबर का पेज है ना, देखो ये महाबंध का प्रमाण जिसको लिखा है पेज नंबर 32 पर लास्ट लाइन, द्वादशांग वाणी से संबंध रखने वाले प्राचीन साहित्य की दृष्टि से गुणधर आचार्य रचित 233 गाथाओं का जो विशेषता प्राप्त होगी वह उन पर रची गई 72,000 श्लोक प्रमाण टीका को नहीं होगी। इस दृष्टि से यदि धवला टीका पर भी प्रकाश डाला जाए तो कहना होगा के 60,000 श्लोक प्रमाण टीका भी 9वीं सदी की है। क्या कहते हैं, ये टीका है ना धवला, ये टीका है जो वीरसेन स्वामी ने लिखी थी वो 9वीं शताब्दी की है। प्राचीन अंश 5 खंडों रूप में केवल 6,000 श्लोक प्रमाण है। प्राचीन खंड ने ओरिजिनल षटखंड जिसको कहेंगे, जो हमने जो सूत्र रूप रचना थी ओरिजिनल प्राकृत में हमने देखा ना, उसका हिंदी अनुवाद हमने पढ़ा था। धवला तो टीका है, उसका स्पष्टीकरण है, और ओरिजिनल ग्रंथ कौन सा है तो षटखंड, उसमें से 5 खंडों पर धवला टीका हुई है। महाबंध ग्रंथ की संपूर्ण 40,000 श्लोक प्रमाण रचना, यहाँ टीका नहीं कहा रचना कहा, ये भूतबली आचार्य की ये षटाखंड उन्होंने स्वयं रचित किया है, उसमें कोई भी टीका आज तक उपलब्ध नहीं है, ओरिजिनल है। हमने तो पढ़े ना सारे 7 भाग। हाँ, आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने जब पहली बार धवला पढ़े थे तो साधारण 1,250 लेक्चर हुए थे, 1.5 घंटे के। हाँ, और जब महाबंध पढ़े जो 7 ही पुस्तकें हैं तब 1400 और कुछ लेक्चर हुए थे, समझो ना 1450, यानी इसमें इतना माल है। और जो हमने 10वीं 11वीं 12वीं 13वीं वगैरह पुस्तकें पढ़ी ना धवला की, कठिन है बहुत, गणित वगैरह बहुत कठिन है, वैसा यहाँ कुछ भी नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ऐसा उसका नाम सुनकर ऐसा लगता है क्या है, हम कुछ नहीं समझ पाए, ऐसा नहीं रखना कभी, स्लो एंड स्लो पढ़ते जाओ आप। या अभी तो ये सब उपलब्ध है, सभी साइट पर भी है, अन्य भी है प्रवचन उसके, तो आप सामने पुस्तक रखो या पुस्तकें भी अभी साइट पर उपलब्ध होती है कहीं कहीं इसमें अभी इंटरनेट पर, तो आप सुनना बस इतना करना है, पर रेगुलरली होना चाहिए। तो ये भूतबली स्वामीकृत होने से अत्यंत प्राचीन तथा महत्वपूर्ण है। इस प्रकार सबसे प्राचीन जैन वांग्मय की दृष्टि से महाबंध सूत्र की रचना धवला जयधवला टीकाओं के मूल की अपेक्षा लगभग 7 गुणी है। समझ में आते हैं? ब्रह्म हेमचंद्र रचित श्रुत स्कंद में लिखा है 70,000 धवलो जय धवलो 60,000 बोधवो महबंधम 40 सिद्धंततयम अहम वंदे। धवल शास्त्र 70,000 प्रमाण है, जय धवल 60,000 प्रमाण है, तथा महाबंध 40,000 प्रमाण लिखा है वो श्लोक प्रमाण समझना। इन सिद्धांत शास्त्र त्रय की मैं वंदना करता हूँ। जब यहाँ श्लोक कहते हैं तो पहले के जमाने में देखो आप आगे पढ़ेंगे तो श्लोक रूप रचना नहीं है, वो सारा गद्य रूप रचना है, फिर भी उसको कहेंगे 60,000 श्लोक प्रमाण है, उसका अर्थ क्या होता है? तो एक श्लोक में 32 अक्षर होते हैं, जैसे ना नमः समय साराय 8, स्वानुभूत्या चकासते 8, 8, 8, 16, वो पहली लाइन हुई, दूसरे में भी 16, ऐसे 32 अक्षरों का एक श्लोक होता है। तो कोई भी पहले के जमाने में पद्धति थी, वहां कोई ऐसे पैराग्राफ बनाए और ऐसा कुछ नहीं, कंटिन्यूस लिखा जाता था और एक एक अक्षर, एक एक लाइन में से जो 32-32 अक्षर आते थे तो उसको गिना ही जाता था। तो फिर वो 60,000, 40,000, 70,000 ये जो श्लोक प्रमाण बात है उसको ये कहते हैं। क्योंकि श्लोक किसको कहना, तो ये 32 देखो यहाँ पर भी आगे जरा हमें तो अभी सरस्वती की पूजन तो याद है, पेज नंबर 37 निकालो, इसी में वहां तो द्वादशांग कितना बड़ा है उसकी तो चर्चा हुई थी कि सब मिलकर 112 कोड़ी और 84,58,005 इतने पद है, क्या कहा? पेज नंबर 37 देखो, ये ऊपर जो है ना श्लोक जैसा लिखा है बोल्ड में, उसको पढ़ेंगे। 112 कोड़ी बखानो, 84,00,000 ऊपर जानो, 58,00,000 पंच अधिकानो, द्वादश अंग सर्व पद मानो। हम तो सरस्वती पूजन में तो गा गा के उनको अर्घ्य भी चढ़ाते हैं। ये सभी 12 अंग जो है, द्वादशांग जिसको कहते हैं, उसके पद कितने हैं? तो 112,84,58,005। अब पद किसको कहना, तो एक एक पद में अक्षर कितने होते हैं मालूम है? याद है कि भूल गए? 1634,83,07,888 इतने अक्षरों का एक पद होता है। यानी ये सब मध्यम पद में जो जिनवानी रचित है, हमारे पद यानी शब्द जो होते हैं, हम जो वाक्य बोलते हैं तो अनेक शब्दों का समूह है, और वहां जो है ये सब पदों की जो रचना होती है, इसमें सबसे छोटे में छोटा आचार अंग है उसमें 18,000 पद है। पद का अर्थ क्या है? उसमें अक्षर कितने हैं? तो एक एक पद में इतने इतने अक्षर है, 1634 8307 888 इतने अक्षरों का एक पद हुआ। एक पद में श्लोक कितने हो गए? अभी जो हमने 1634 वगैरह देखे ना, उसको डिवाइडेड बाय 32 करो तो वो श्लोकों का प्रमाण आते हैं। देखो नीचे लिखा है, देखो 51,08,00,000 ','//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// गाए। एक एक पद में इतने श्लोक है। ये तो हम तो सरस्वती पूजन तो पूरे जिंदगी भर करते आए, परंतु मैंने बहुत बार प्रवचनों में भी ये दो लाइन का अर्थ पूछा, किसी को पता ही नहीं, बस गाया और हमने अर्घ चढ़ा दिया, इतना ही होता है। आपने ये पूजन सुनी है कि नहीं सुनी? नहीं सुनी। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा, चेन्नई में? हाँ हाँ, वेरी गुड। देखो, मूल बात पढ़ने लायक है, ये तो एकदम टॉप मोस्ट बात आप इस आज आए हैं इसमें। आज हमने ये पहली पुस्तक आज से शुरू की है। धवला का हमारा हो गया, ये सेकंड टाइम हम महाबंध पर यहाँ स्वाध्याय चल रहे हैं। आपके लिए तो बिल्कुल बेसिक बातें आवश्यक है, और वो भी चलती यहाँ पर, उन सुबह हमारा ये स्वाध्याय चलता है। आज तो बिल्कुल हम जनरल ही ले रहे हैं, कोई बात नहीं। यहाँ तो ये तो बात बताए हमको मोक्ष चाहिए, तो पहले में बंध क्या है, वो क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, क्या क्या बातें होती है, वो भी जानना आवश्यक है। इसलिए इतना विस्तार महाबंध है। पहले भी धवला में एक खुदा बंध यानी क्षुद्र बंध नाम की पुस्तक आई थी, यानी उसमें बंध का इन शॉर्ट वर्णन था। यहाँ तो बहुत विस्तार से वर्णन चलेगा, क्योंकि ये सात पुस्तकों में ये पहली पुस्तक तो प्रकृति बंध पर है, 500 पेजेस तो उस पर है। दूसरी और तीसरी पुस्तक में तो स्थिति बंध की बात है, 500-500 पेजेस यानी 1000 पेजेस स्थिति बंध के ऊपर, उतने 1000 पेजेस अनुभाग बंध के ऊपर, और फिर प्रदेश बंध के ऊपर भी उतने ही 1000 पेजेस है। देखो यहाँ क्या कहते हैं, अभी ये अभी हमने जो देखा ना, एक एक पद में श्लोक कितने हैं, तो कितना कहते हैं, 51 करोड़, 8 लाख, 84 हजार, 621, यानी 600 और 621, इतने श्लोक है, कैसे निकले? वो 1634 करोड़ वाली बात थी ना, डिवाइडेड बाय 32, इतने आते हैं। और ये हमारे सरस्वती के पूजन में भी लिखा है, और उसका अर्थ किसी को पता नहीं होता है। अब हम आगे जरा बढ़ते हैं। ये महावीर भगवान के बाद कैसे कैसे कौन कौन से मुनि हुए, क्या क्या हुए, वो बहुत विस्तार से यहाँ बात बताई है। थोड़ी बात मुझे बतानी थी, बता के फिर हम ग्रंथ को प्रारंभ करेंगे। जितना पढ़े उतना थोड़ा है इसमें, इतनी अभी मुझे कुछ वाक्य दिखा था, बहुत अच्छा था उसमें। हाँ देखो, 35 नंबर का पेज, प्रस्तावना का। ये 34 नंबर के लास्ट दो लाइन है ना, वहां से मैं पढ़ूंगी। देखो, महाबंद के महाधवल नाम के बारे में, महाबंद कहो महाधवल कहो एक ही बात है। सन 1945 में चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री 108 शांति सागर महाराज के समक्ष चर्चा करने का अवसर आया था। इस ग्रंथ की प्रस्तुत हिंदी टीका का आचार्य महाराज ध्यान पूर्वक स्वाध्याय कर चुके थे, अतः ग्रंथराज से प्राप्त परिचय के आधार पर आचार्य महाराज ने कहा था, सचमुच यह ग्रंथ महाधवल है। बंध पर स्पष्टता पूर्वक प्रतिपादन करने वाला शास्त्र यथार्थ में महान है। बंध का ज्ञान होने पर ही मोक्ष का बराबर ज्ञान होता है ना? क्योंकि वो हमने सात तत्वों की वो तो सारे प्रयोजन भूत है ना। अरे बंध को क्यों जाना, बंध को क्यों नहीं, कौन अपने को जानो, अपन अपने को जानना है, परंतु अभी बंध है उसका ज्ञान होना चाहिए। सातों तत्वों की समीचीन श्रद्धा होनी चाहिए ना, पहले उसका ज्ञान हुए बिना श्रद्धा कैसे होगा। बंध है यह है पता है, परंतु बंध का ज्ञान है यह नहीं कहा। ज्ञान तो सबका होना चाहिए, तो बंध का ज्ञान होने पर ही मोक्ष का बराबर ज्ञान होता है। समय सार पहले नहीं चाहिए, पहले महाबंध चाहिए। वैसे स्वामी जी भी कहते ना, पहले समय सार नहीं चाहिए, पहले प्रवचन सार चाहिए, क्योंकि उसमें तो 6 द्रव्यों का स्वरूप बताया गया है। अभी अपना शाम को चल रहे ना प्रवचन सार, पहले सोचो हम क्यों दुख में पड़े हैं, क्यों नीचे हैं। अभी नीचे उसका नीचे का पैराग्राफ एक लाइन पहली, महाबंध का अध्ययन बुद्धि का विलास या बौद्धिक व्यायाम की सामग्री मात्र उपस्थित करता है, यह धारणा यानी ऐसी मान्यता अयथार्थ है। यानी वो केवल बुद्धि के लिए, इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए नहीं है, ये कह रहे हैं। वो तो आता है कि इसमें तो बहुत आनंद की भी उत्पत्ति होती है, और गुणश्रेणी निर्जरा का कारण बताए मुनियों को इसमें क्यों, क्योंकि आत्मा में स्थित हो जाते ना, अध्ययन क्यों कर रहे हैं। आत्मा में अधिक काल स्थिरता नहीं हो पाती है तो क्या करेंगे। अभी दुनियादारी में जिसको अभी आत्मा का अनुभव भी हुआ है, वो दुनियादारी में रस नहीं रहा, तो उसके लिए क्या अवलंबन है। अभी जब आत्मा में नहीं स्थिरता पाता है तो उसके लिए यही अवलंबन है। और मुनियों के लिए तो इसको तो असंख्यात गुणश्रेणी निर्जरा का कारण बताया है। केवल पढ़ने से नहीं होता है, उसमें तो इतनी निर्मलता होती है, बुद्धि की निर्मलता होती है और विशुद्धि बढ़ती है, और उसके निमित्त से कहो अपने अंतरंग में स्थिरता और बढ़ जाती है, इसलिए वो बहुत कार्यकारी है। देखो नीचे का पैराग्राफ एकदम लास्ट, महाबंध का परिशीलन तथा मनन करते समय यह बात समझ में आई, जब तक मनोवृत्ति पवित्र तथा निराकुल न हो तब तक ग्रंथ का पूर्वापर गंभीर विचार नहीं हो पाता। यानी सहज रूप से ये बातें होती है, उसमें भी हाँ वही तो हाँ, यानी जितना आप आचार्य के बंध का ज्ञान होने से जीव पाप से बच, पहले पैराग्राफ के लास्ट 2-3 लाइन में, इससे कर्मों की निर्जरा भी होती है वगैरह वगैरह। अभी हम आगे बढ़ते हैं, और ये कैसे कहाँ से ओरिजिनल हुआ उसकी भी बात बहुत विस्तार से बताई थी कि निकालो 41 पेज। सूत्रकार का समय जो बताए ना, सूत्रकार का समय वाला पैराग्राफ है, उसमें से लास्ट लाइन, महाबंध के रचयिता आचार्य भूतबलि का समय ईसा की प्रथम शताब्दी स्वीकार करना होगा, यानी पहली सदी में ये रचना हुई थी। महाबंध शास्त्र की रचना भूतबलि आचार्य ने की थी। इस संबंध में धवला टीका में कहा है कि सौराष्ट्र देश के गिरिनगर पत्तन की चंद्र गुफा में अंग तथा पूर्व के एक देश ज्ञाता, अंग यानी वो 12 अंग मिला आप, हाँ 41 वो सूत्रकार का समय है, उसमें सेकंड पैराग्राफ, धर्सेन आचार्य विराजमान थे। ये जो भूतबलि और पुष्पदंत है वो धर्सेन आचार्य के शिष्य थे। धर्सेन आचार्य हुए, उनको श्रुति का बहुत ज्ञान था। क्या है, महावीर भगवान के बाद तो ये ज्ञान की तो कुछ काल तक तो रहा 12 अंगों का ज्ञान, बाद में वो कम होता गया, बुद्धि की भी हीनता हुई। परंतु ये धर्सेन आचार्य थे, सभी अंगों में से कुछ कुछ एक देश ने थोड़ा थोड़ा जानते थे, तो उनके विकल्प आया कि अभी इसका भी ह्रास होने वाला है तो ये लिखित रूप से रखे। तो ये मुनि संघ के एक बहुत बड़ा दक्षिण सातारा के आसपास कहीं पर वो उनका कोई सम्मेलन था विद्वानों का, तो उन्होंने वहां लिखकर भेजा कि ये दो शिष्य चाहिए, उनको भेज दो। तो ये भूतबलि और पुष्पदंत उनके पास गए, नमस्कार करके वगैरह उन्होंने एक एक मंत्र दिया दोनों को कि इसकी साधना करो। तो उन्होंने वो मंत्र की साधना करके जो कोई तप किया, तो उन्होंने ऐसे कोई देवी उत्पन्न हुई कि कोई कुरूप थी, तो उन्होंने सोचा ये तो नहीं हो सकता है, तो उन्होंने फिर वो जांचा मंत्र को, तो उसमें कुछ अशुद्धि, वो खास करके उन्होंने धर्सेन आचार्य ने जानबूझकर वो लिखा था, तो फिर उन्होंने ठीक करवाया और फिर वो जैसे उसका अन्य देवता प्रकट हो गए। तो फिर उन्होंने जाके मुनिराज को नमस्कार करके फिर उन्होंने उनका पूरा उनको पढ़ाया, और उसके बाद ये पुष्पदंत और भूतबलि आचार्यों ने ये सब रचना की। पुष्पदंत आचार्य तो सीनियर थे, उन्होंने पहला खंड के बाद वो लिखकर भूतबलि आचार्य के पास भेजा और बाकी रचना इन्होंने पूर्ण की थी। देखो नीचे अष्टांग महानिमित्त विद्या के पार, उनके चित्त में यह भय उत्पन्न हुआ आगे श्रुत ज्ञान का विच्छेद हो जाएगा, यानी नष्ट हो जाएगा। अतः प्रवचन वत्सल उन महर्षि ने दक्षिणापथ के निवासी तथा महिमा नगरी में एकत्रित आचार्यों के पास अपना एक लेख भेजा जिसमें उनके मनोगत भाव सूचित किया था। अब देखो श्रुताकार कथा में लिखा है धर्सेन आचार्य को अग्रायणी पूर्व के अंतर्गत, ये अग्रायणी पूर्व क्या होता है, 12वें अंग का ये जो 14 पूर्व होते हैं उसमें से ये दूसरा पूर्व, पंचम वस्तु के, अभी एक एक पूर्व में क्या होते हैं, वस्तुएं होती है यानी वो अधिकार होते हैं, चतुर्थ भाग महाकर्म प्रावृत का ज्ञान था। अपने निर्मल ज्ञान में जब उन्हें यह भासमान हुआ कि मेरी आयु थोड़ी शेष रही है, यदि कोई प्रयत्न नहीं किया जाएगा तो श्रुत का विच्छेद हो जाएगा, ऐसा विचार कर उन्होंने देशेंद्र देश के वेणा तटाकपुर में निवास करने वाले महामहिमाशाली मुनियों के निकट एक ब्रह्मचारी के द्वारा पत्र भेजा। अभी वो विस्तार से नहीं पढ़ेंगे, तो उन्होंने वहां से उनके की कोई तीक्ष्ण बुद्धि वाले मुनियों को भेज दो। फिर वो जो मैंने अभी बात बताई ना, वो दो मुनियों को वो भेजा, फिर उन्होंने उनकी परीक्षा की और फिर उन्होंने उनको पढ़ाया। अब आगे बढ़ते हैं, अभी हम पेज नंबर 47 निकालो। मैं बीच के कुछ अंश बता रही हूं, आपको तो पूरा ही पढ़ना है ये। ये नीचे से दूसरा पैराग्राफ, इस ग्रंथ में अप्रामाणिकता का लेज भी नहीं है। इस संबंध में वीरसेन आचार्य का कथन महत्वपूर्ण है। वे लिखते हैं इस प्रकार प्रमाणीभूत महर्षि रूप प्रणालिका के द्वारा, एक इसका अर्थ क्या होता है, सर्वज्ञ भगवान के द्वारा जो मूल प्ररूपना हुई थी महावीर भगवान के द्वारा, गणधरों ने जिसकी शास्त्रों की रचना की, और वो वहाँ पद्धति क्या थी, वो मौखिक रूप से चलता था और वहाँ बुद्धि भी इतनी थी कि एक पाठ ही होते थे, एक बार सुन लिया तो याद हो जाता था, तो इसी से बहुत सालों तक तो इस तरह से ही चला, पर बाद में बुद्धि भी कम होती गई। परंतु ये क्या है, प्रमाणीभूत महर्षि रूप प्रणालिका, यानी जो प्रणालिका है ना, वो जो कंटिन्यूटी आई है तो मूल सर्वज्ञ भगवान के द्वारा है, किसी ने अपने मन के द्वारा कुछ भी रचना नहीं की। उससे प्रवाहित होता हुआ महाकर्म प्रकृति प्रावृत रूप, जो अभी हमने इसमें से ये सब ग्रंथों की रचना हुई है, अमृत जल प्रवाह धरसेन भट्टारक को प्राप्त हुआ। उन्होंने भी गिरी नगरी की चंद्र गुफा में भूतबली पुष्पदंत को संपूर्ण महाकर्म प्रकृति प्रावृत सौंपा, यानी उनको सिखाया। तदनंतर श्रुत नदी का प्रवाह विच्छिन्न न हो जाए इस भय से भव्य जीवों के अनुग्रह के लिए उन्होंने महाकम्म पैड़ी पाहुड़ का उपसंहार करके षटखंड बनाए, यानी ओरिजिनल कितना बड़ा होगा उसके शॉर्ट में उस षटखंड रूप से रचना की। अतः त्रिकाल गोचर समस्त पदार्थों को ग्रहण करने वाले ने जानने वाले प्रत्यक्ष तथा अनंत केवल ज्ञान से उत्पन्न हुआ है। देखो क्या कहते हैं, ये जो ग्रंथ है धवला हो जाए धवला, ये जो षटखंडम ओरिजिनली है वो सर्वज्ञ की वाणी के अनुसार लिखा हुआ है, क्योंकि पूरी परंपरा जो कहते हैं प्रमाणीभूत महर्षि रूप प्रणालिका, और ये धरसेन आचार्य को भी उसका ज्ञान था और उन्होंने भूतबली और पुष्पदंत आचार्य को भी सिखाया था और उनके द्वारा ये लिखित रचना हुई है। तो कहते वो अनंत केवल ज्ञान से उत्पन्न हुआ है, प्रमाण स्वरूप आचार्य प्रणालिका के द्वारा आगत है, ने आया हुआ है, प्रत्यक्ष तथा अनुमान प्रमाण से अबाधित है। जैसे बाद में जो कुछ अन्य मतियों की भी रचना हुई है, अन्य मतियों की भी कहते हैं, या जैसे मोक्षमार्ग प्रकाशक में या अन्य ग्रंथों में आचार्य कुंकुंदन में लिखा है कि श्वेतांबर ग्रंथों की रचना बाद में हुई है और उसमें बहुत सारी मिलावटें बातें आ गई, तो परंतु ये ओरिजिनल प्रणालिका से आधारभूत नहीं है। इसलिए कहते हैं कि ये शास्त्र प्रमाण है, स्टैंडर्ड है, यानी 100% सत्य है, इसलिए मोक्षाभिलाषी भव्यात्माओं को इसका अभ्यास करना चाहिए, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, अड़तालीस पेज पर निकालो जरा। महाधवल मनोवृत्ति लिखा है ना, देखो चौथी लाइन उसमें, कषाय आदि की विशेष तीव्र अवस्था में तो मनोवृत्ति महाबंध का अवगाहन भी नहीं कर सकेगी, क्योंकि ऐसे जो शास्त्र है उनका अभ्यास वही कर सकता है जो मंद कषाय है, तीव्र कषाय में ये कार्य भी नहीं हो सकता। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये पूरी प्रस्तावना छोड़ दो, अब निकालो पेज नंबर 1, मूल शास्त्र के नंबरिंग जहां से शुरू होते हैं, यहाँ ऊपर लिखा ना श्री भगवंत भूत बलि भंडार है पणिदो महाबंधो। लास्ट टाइम मैंने पहले 3 लेक्चर तो पूरी पहली प्रस्तावना वगैरह पढ़ी थी। हाँ, अभी हम आज से ये बात शुरू करते हैं। यहाँ पर वो 16 तारीख थी, आज 18 है। देखो श्री भगवंत भूत बलि भट्टार्य पणिदो महाबंधो पढ़मो पैड़ी बंधाइयारो, यानी श्री भगवंत भूत बलि भट्टारक, ये आचार्यों को भट्टारक भी कहने की पद्धति थी, प्रणित यानी उनके द्वारा बताया हुआ महाबंध का ये पहला प्रकृति बंध अधिकार है। देखो बंध होता है तो 4 प्रकार का होता है, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। तो प्रकृति बंध किसको कहना है, जो कर्म है स्वभाव के अनुसार उसके 8 में हम उसके अलग अलग प्रकृतियां बताते, उसको कहेंगे मूल प्रकृति। ज्ञानावरण दर्शनावरण है, मोहनी है, अंतरा है, घाती कर्म और अघाती कौन सी है, वेदनीय आयु नाम और गोत्र, इनको कहते हैं प्रकृति। उनका अपना अपना स्वभाव जुदा जुदा है, उसका फलदान अलग अलग होता है। और उसके जो उत्तर यानी भेद होते हैं उसको कहेंगे उत्तर प्रकृति। तो ये पहले अधिकार में प्रकृति बंध संबंधी चर्चा चलेगी, मूल प्रकृतियाँ कौन सी है, उत्तर कौन सी है, उनकी क्या क्या बातें होती है। प्रकृति बंध केवल उसमें कितनी स्थिति पड़ती क्या, उसकी कोई चर्चा नहीं है। यानी कोई प्रकृति ऐसी लगातार कितने तक बन सकती है, ये सब बातें इसमें आएगी। एक साथ कौन कौन सी प्रकृतियाँ बन सकती है, इसकी सब पूर्ण व्यवस्था यानी डिटेल इसमें आ जाएगी। अब अनुवादकर्ता का मंगल। महाधवल नाम से प्रसिद्ध इस महाबंध महाशास्त्र की टीका निर्माण का कठिन कार्य निर्दोष तथा निरंतराय संपन्न हो, इस कामना से वेदना खंड की धवला टीका के प्रारंभ में वीर सेनाचार्य कृत मंगल गाथाओं द्वारा पंच परमेष्ठी का पुण्य स्मरण किया जाता है। वेदना खंड याद है ना आपको, वो कृति अनुयोग द्वार वगैरह सब उसके थे, स्पर्श अनुयोग द्वार, कृति अनुयोग द्वार, वेदना खंड के। यानी वो तो 10वीं पुस्तक से 9वीं पुस्तक से शुरू हुए थे। सिद्धादत्थमला विशुद्ध बुद्धि अलथ सौवत्था तिहुवन शिरसे हरया पसियंतु भड़ारया सौवे। उसका अर्थ है जिन्होंने ज्ञानावरणादि अष्ट प्रकार के कर्म मल को दग्ध कर दिया है। दग्ध अठ मला यानी आठ प्रकार के मल, कर्म मल यानी आठों ही प्रकृतियां नष्ट कर दिए, दग्ध कर दिए। जिन्होंने विशुद्ध बुद्धि यानी केवल ज्ञान के द्वारा समस्त पदार्थों की उपलब्धि की, उपलब्धि के यानी हासिल किया, ऐसा होता है जान लिया है, उसको कहीं उपलब्ध किया है, यानी उनका पूर्ण बोध प्राप्त किया है। सर्वज्ञ भगवान है तो सभी द्रव्यों के सभी गुणों को अनादि के अनंत काल तक सभी पर्यायों को युगपत एक समय में जान लेते हैं। जो त्रिभुवन के मस्तक पर मुकुट के समान विराजमान है, ये किसका वर्णन होगा, सर्व सिद्धि वालों का, सिद्ध भगवान, वे संपूर्ण सिद्ध भट्टारक प्रसन्न हो गए, इसी का भावार्थ। आत्मा का सहज स्वभाव, देखो सहज स्वभाव किसी के जो उत्पन्न नहीं हुआ है, स्वभाव तो अनादि से होता है। स्वभाव के पांच पॉइंट्स मालूम है, अनादि अनंत है, स्वतः सिद्ध है। हाँ, फिर स्वभाव जो है वो परिपूर्ण होता है, वो किसी ने निर्माण नहीं किया है, परिपूर्ण है। फिर अमर्यादित होता है, उसमें कोई लिमिट नहीं होती, स्वभाव में कोई लिमिट नहीं होती। ज्ञान हमारा स्वभाव है तो उसमें कोई लिमिट नहीं है। और असहाय यानी उसके पर के सहाय की आवश्यकता नहीं है, उसमें कोई निमित्त नहीं होता, क्योंकि निमित्त किसमें होता है, कार्य में होता है, पर्याय में होता है। पर्याय में निमित्त उपादान दो बातें होती है, परंतु स्वभाव तो है, उसमें क्या है, उसकी तो कोई निर्मिति नहीं होती, तो उसमें कोई निमित्तपने की सहायपना की परवस्तु कोई आए तो स्वभाव, ऐसा कोई उसमें पराधीनता है ही नहीं। तो यहाँ क्या कहते हैं, आत्मा का सहज स्वभाव, कौन से आत्मा का, सिद्धों के क्या, निगोद के, सभी मेरे हैं। आत्मा का सहज स्वभाव अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख तथा अनंत वीर्य है। ये जीव क्यों रखड़ रहा है, तो कहते हैं उसने अपने स्वभाव को स्वीकार नहीं किया, उसको पता ही नहीं है, और बस पर्याय में जो ज्ञान हो रहा है उसका भी पता नहीं है। पर्याय में राग द्वेष जितना मैं हूँ, और वो भी क्यों, पर लक्ष्य कर करके, यानी पर के तो उसको हयाती की उपस्थिति की उसको श्रद्धा है, राग द्वेष हो रहा है वो मेरा स्वरूप है मान लिया, और बस इतना ही मैं हूँ मान कर वो भटक रहा है। जो ओरिजिनल स्वभाव कैसा है हरेक का, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख तथा अनंत वीर्य है। अब मोहनीय ज्ञानावरणादि कर्मों का मल आत्मा में अनादि से लगा हुआ है। अनादि से जीव और कर्म बंधी हुई अवस्था में ही पाए जाते हैं, ऐसा नहीं कि पहले शुद्ध था और बाद में किसी ने आकर मिलाया हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिससे यह संसारी आत्मा जगत में परिभ्रमण किया करती है। ये परिभ्रमण होता है ना, जन्म मरण चल रहा है। हम आज है मनुष्य पर्याय में आए हुए, तो हमारा अस्तित्व कब से है? अनादि से। तो अनादि से क्या क्या किया हो इमेजिन कर सकते? अनादि कहने से उस अनंतता का एहसास नहीं हो रहा है हमको। किसी को कहें इसको 14 साल की सजा, अरे बाप रे 14 साल, और अनादि, हाँ अनादि होता होगा। यानी कितने अनंत 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 भव में क्या क्या उसने, अरे जन्म लिया, जितने आयु बांध कर आया था उतने भोगी, और वो अभी इस आयु में क्या कर रहे हैं, वैसे ही अनादि से करे। संकल्प विकल्प करता है पर चीज में कुछ कर नहीं सकता, परंतु उसमें कुछ संयोग अच्छे कुछ बुरे मानकर उसी में राग द्वेष करता रहता है, उस समय अनुसार नए नए कर्म का बंध करता रहता है, और वैसे वैसे अन्य अन्य गतियों में भ्रमण करता रहता है। ये ऑटोमेटिक बुकिंग चल रही, कहाँ जाना है क्या करना है, और उससे बाहर आके अपने स्वरूप संबंधी कभी विचार ही नहीं आया उसको। ये मनुष्य भाव ऐसा है कि इस पोजिशन पर उसको शास्त्राभ्यास की इन्हें अवसर पाया जाता है, परंतु तो वो छोड़ दिया, और उसका पूरा जीवन किसमें बर्बाद करता है, धन कमाने के पीछे लगता है। तो कमाए तो भोगना भी चलनी चाहिए ना, तो इतने में मरण सामने आ टपकता है, होता है कि नहीं होता है? तो जगत में परिभ्रमण किया करती है। सिद्ध भगवान ने उस कर्म मल का ध्वंस कर दिया है। सिद्ध भगवान तो कैसे हुए, तो अपने में अपने स्वभाव में स्थिर रहने से सिद्ध अवस्था प्राप्त हुए, वो कर्म ऑटोमेटिकली निकल गए, फिर भी कहने की पद्धति उन्होंने कर्मों का नाश किया। विशुद्ध ज्ञान के कारण, विशुद्ध ज्ञान ने केवल ज्ञान, समस्त पदार्थों का बोध होता है, तभी तो वो सर्वज्ञ हो गए। जिस प्रकार दर्पण के तल से मल दूर होने पर, दर्पण के तल से, दर्पण कैसे बनाते कभी देखा है? नहीं मालूम, खाली उसमें मुंह देखना मालूम है। हाँ कैसे का, पारे का होता है कोटिंग, पीछे के साइड पारा लगाया होता है। तो उसमें वो कांच में तो कुछ नहीं दिखता था, दर्पण में क्यों दिखता है? यहाँ क्या, दर्पण के तल से मल दूर होने पर वो स्वच्छता हो जाती ना, एक प्रकार की रिफ्लेक्टिविटी आती उसमें, बाह्य वस्तुएं स्वयमेव दर्पण की निर्मलता के कारण उसमें प्रतिबिंबित होते। देखो ये दर्पण की निर्मलता है, उसमें उस स्वच्छता कहो निर्मलता कहो, उसमें वो बाह्य पदार्थ उसमें प्रतिबिंबित होती। अब ये ज्ञान की कैसी विशुद्ध ज्ञान है, कितनी निर्मलता है कि पूरा चर वस्तु यानी जितना अनंत जीव अनंतानंत पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और असंख्यात काल, क्योंकि कालानु जो है उनके अनादि अनंत सभी पर्याय, सभी गुण सभी पर्याय उनके निर्मल ज्ञान में झलकती है। वो स्वच्छत्व एक गुण भी है ना आत्मा का, जिसे ज्ञान गुण है वो उसका कार्य वही है। उसी प्रकार कर्म मल रहित आत्मा में स्वतः सर्व पदार्थ झलकते हैं, निर्मल तथा पूर्ण बोध युक्त होने से यानी केवल ज्ञानी होने से, तथा कर्म मल रहित होने के कारण सिद्ध परमात्मा जगत में श्रेष्ठ है, उनके द्वारा विश्व शोभित होता है, वे लोक के अग्रभाग में विद्यमान, लोक का अग्रभाग यानी लोकाकाश का टॉप मोस्ट भाग जो है, ईशत प्रागभार पृथ्वी, ये कौन सी पृथ्वी है? आठवीं पृथ्वी, कहां से कहां तक फैली है? पूर्व पश्चिम एक राज्य और दक्षिणोत्तर सात राज्य पूरी, और उसके सेंटर में ये सिद्धशिला है, वो पृथ्वी का ही पार्ट एंड पार्सल है, उसी में ये शिला विद्यमान है, ऊपर अवस्थित है, ऊपर है, उसके ऊपर तीन वात वाले है, उसके अंतिम वात वाले में सिद्ध भगवान है। ऐसे मालूम पड़ते हैं मानो त्रिभुवन के मस्तक पर मुकुट ही हो। यहाँ लोक की पुरुषाकृति को दृष्टि में रखकर सिद्धों को मुकुट कहा, ये तो उपमा देके उनके बड़प्पन बताना है, बस इतना है। सिद्ध परमात्मा की निवास भूमि के विषय में तिलोय पन्नति में इस प्रकार कथन किया गया है, सर्वार सिद्धि इंद्रक विमान। देखो जो अनुदिश और ऊपर अनुत्तर, पांच अनुत्तर विमान है, सेंटर का विमान का नाम है सर्वार सिद्धि, बाकी के नाम क्या है? विजय जयंत अपराजित, विजय वैजयंत, सबको मिलकर वो अनुत्तर नाम है, विजय वैजयंत जयंत और अपराजित, और बीच वाला सर्वार सिद्धि। तो सेंटर के विमान को इंद्रक कहते हैं, तो यहाँ कहते सर्वार सिद्धि इंद्रक विमान के ध्वज दंड से द्वादश योजन मात्र ऊपर जाकर आठवीं पृथ्वी स्थित है, क्योंकि आठवीं पृथ्वी के नीचे भी 20,000 योजन वाले वातवलय हैं। उसके ऊपर के वातवलय में, पृथ्वी को लगते हुए वातवलय में ये विमान है सब। उसके ऊपरीम और अधस्तन तल में से प्रत्येक का विस्तार पूर्व पश्चिम में रूप रहित एक राजू है। वेत्रासन के सदृश वह पृथ्वी उत्तर दक्षिण भाग में कुछ कम 7 राजू लंबी तथा 8 योजन बाहल्य वाली। क्या कहते हैं वो जो आठवीं पृथ्वी कैसी है, ऐसी पूर्व पश्चिम एक राजू, दक्षिणोत्तर 7 राजू। उसकी मोटाई कितनी है, जैसे इसकी मोटाई कितनी है, 8 योजन। हाँ, तो ऐसी ये पृथ्वी है, तो उसके सेंटर में बीचों बीच वो सिद्ध शिला उसी में अंदर। यह पृथ्वी घनोदधि, घनवात और तनुवात इन 3 वायुओं से युक्त है। उसके ऊपर ये 3 वातवले हैं, इनमें प्रत्येक वायु का बाहुल्य 20,000 योजन प्रमाण है। वो नीचे का 20,000 है, ऊपर का तो कितना है, 2 योजन, 1 2 कोस, 1 कोस और 1 कोस में कुछ कम, ये 425 कम धनुष, 1575 है, कितना कम है, तो 425 कम है। इसके बहुमध्य भाग में चांदी तथा सुवर्ण के समान नाना रत्नों से परिपूर्ण ईषत प्रागभार नाम का क्षेत्र है। यह क्षेत्र ऊर्ध्व मुखयुक्त धवल छत्र के समान, यानी ऊपर बड़ा है और नीचे ऐसा है, पर हम वो सिद्धशिला ने ऐसी चंद्राकार ऐसा नहीं है, इतनी चंद्राकार होगी क्या, थोड़ा सा कर्वेचर होगा ना, कर्वेचर कितना होगा, देखो बीच में 8 योजन तो उसकी चौड़ाई है, और ऐसे कितना है, 45,00,000 योजन। 8 योजन को सिद्ध शिला की बात है, बीच में 8 योजन है और ये 45,00,000 योजन है, तो अभी 8 योजन के बदले 8 मिलीमीटर ले लो, और 45,00,000 मिलीमीटर का 4.5 किलोमीटर हो जाएगा, नहीं समझे, कितने मिलीमीटर का एक मीटर होता है, कितने सेंटीमीटर का एक मीटर होता है, 100, तो 1000 मिलीमीटर का एक मीटर होता है और 1000 मीटर का एक किलोमीटर होता है ना, तो 45,00,000 मिलीमीटर हम कह रहे हैं, 8 मिलीमीटर में यानी कितना, ये मिलीमीटर इधर है, यानी एक सेंटीमीटर को भी ये दो लाइन कम, इतना 8 मिलीमीटर, और ऐसा कितना फैला हुआ है, 4.5 किलोमीटर, तो उतना नहीं के बराबर होगा ना, हम प्रोपोर्शन में इतना बताते, इतना वो चंद्राकार नहीं है, बस इतनी बात है, वो कर्वेचर कितना है, नहीं फिर भी है इसलिए कहते हैं, है ना, 8 योजन के लिए हम 8 मिलीमीटर कहा, तो 45,00,000 मिलीमीटर करो ना आप, हमने डायरेक्ट आपको हिसाब बता दिया, आप करके और ऊपर वो ऊर्ध्वमुख का अर्थ क्या, ऊपर जैसे हम नींबू को काट कर रखेंगे तो कैसा होगा, नीचे गोलाकार और ऊपर फ्लैट, अभी नीचे स्लैंटिंग है ऐसा और ऊपर सपाट है। उसका मध्य बाहुल्य 8 योजन और अंत में 1 अंगुल मात्र है, अंगुल मात्र जिसको कहें ना, पेपर थिन जिसको हम कहते हैं अपनी भाषा में, या मक्खी के पंख जैसा, इस तरह से उसके इतने कम होती गई है। त्रिलोक सार में अष्टम पृथ्वी को ईषत प्रागभारा कहा है, ये सिद्ध भगवान और उनका जो कहां रहते हैं उसका वर्णन यहां चल रहा है। अभी हम 556 जो त्रिलोक सार की गाथा है उसको पढ़ेंगे। त्रिभुवन मूर्धारूढ़ा ईषत प्रागभारा धराष्टमी रुंद्रा दीर्घा एक सप्तरच्चु अष्ट योजन प्रमित बाहल्या। बीच बीच में जरा कुछ गलतियां है, त्रिभुवन के पास डैश नहीं चाहिए, त्रिभुवनम ऊर्ध्व ऐसा है ना, और रूप वो दीर्घ रू चाहिए। नीचे भी एक सप्त रज्जु, उसके बीच बीच में जो डैश लगाए उन्होंने वो नहीं चाहिए बस। ऊपर पहली लाइन में मूर्धा रूढ़ा है ना, वो रू दीर्घ होना चाहिए। देखो नीचे त्रिलोक सार नहीं चाहिए, त्रिलोक के शिखर पर चाहिए। वो सार निकाल देना शब्द, त्रिलोक के शिखर पर स्थित ईशत प्रागभारा नाम की आठवीं पृथ्वी है, वह एक राजू चौड़ी, सात राजू लंबी तथा आठ योजन प्रमाण बाहल्य युक्त, बाहल्य यानी मोटी है, थिकनेस उसका। उस पृथ्वी के मध्य में जो सिद्ध क्षेत्र छत्राकार कहा है, छत्राकार यानी छत्र होते हैं पहले के राजाओं के जमाने में छत्र, पर वो कैसा है उल्टा, हाँ, उसका वर्ण त्रिलोक सार में चांदी का बताया है। ये गाथा पढ़ेंगे, तन्मध्ये रूप्यमयम् छत्राकारम् मनुष्यमहिव्यासम् सिद्धक्षेत्रम् मध्ये अष्टवेदक्रमहीनम् बाहुल्यम्। इस सिद्धक्षेत्र के ऊपर तन्मध्ये है ना, उसके मध्य में कौन से, इस आठवीं पृथ्वी के मध्य में तनुवात वलय में अष्टगुणयुक्त तथा अनंत सुख से संतुष्ट सिद्ध भगवान रहते हैं। आठवीं पृथ्वी के ऊपर 7050 धनुष जाकर सिद्धों का नवान है। ये इसको बताती हूँ मैं पहले। पहले वो गाथा का एग्जैक्ट अर्थ है, तन मध्य ने उस आठवीं पृथ्वी के मध्य में रूप्यमय मैंने, रूप्यमय ने चांदी के वर्ण वाला छत्राकार मनुष्य मही व्यासम, इसका अर्थ कौन बताना चाहते है? हाँ प्रेरणा बेन, मनुष्यमही किसको कहेंगे? मनुष्य क्षेत्र, मनुष्य लोक, 45 लाख योजन व्यास वाला, यानी 45 लाख व्यास योजन वाला व्यास से जो गोलाकार होगा वैसा ये सिद्धशिला का आकार है। सिद्ध क्षेत्र मध्य अष्टवेद क्रमहीनम बाहुल्यम, यानी वो तो क्रमहीन बाहुल्य वाला होता है, सेंटर में उसका आठ योजन होता है। अब ये इन्होंने आठवीं पृथ्वी के ऊपर 7050 धनुष कैसे निकाला? देखो ऊपर तीन मातवले हैं। पहला है दो कोस, एक कोस में कितने धनुष होते हैं? 2000। हाँ। दूसरे में एक कोस, एक कोस यानी 2000, और दो कोस यानी 4000, चार एक 5000 हुआ, और ऊपर 1575 होते हैं। ये सबका जो टोटल कितनी हो जाएगी? 7050।
7000 525
सिद्धों की अवगाहना है, उसके ऊपर जाकर वहाँ उनका निवास है, इतना का यानी उसमें 525 योजन नहीं, धनुष 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 कहना उसे, योजन नहीं, पर एक्चुअली उसमें से वो महायोजन है और ये ऑर्डिनरी धनुष, वो यो धनुष जो 1575 धनुष है वो महाधनुष है। नहीं देखो देखो उन्होंने क्या किया, आठवीं पृथ्वी के ऊपर 7050 धनुष जाकर, धनुष में लेना है ना, दो कोस का अर्थ कितना होगा? 4000 धनुष, एक कोस यानी 2000 धनुष, और उस 1575 धनुष होते हैं। वैसे उन्होंने 7575 होना चाहिए,
हाँ,
परंतु हाँ माइनस करवाए थे, परंतु इसका यहाँ लिखा ही सरने क्रम से, परंतु एक्चुअली वो तो महाधनुष और ये ऑर्डिनरी धनुष है, ठीक है।
तो
अंतिम मात वाले के टॉप में विराजमान है, उनके सिर वहाँ लगे हुए हैं, हाँ। पैर अलग अलग लेवल पर हो गए ना, हाँ। राजवार्तिक के अंत में लिखा है, हाँ देखो देखो महाधनुष और धनुष, जैसे अंगुल से शुरुआत होती है ना, ऑर्डिनरी जो अंगुल है जिसको उच्छेद अंगुल कहते हैं, और जिसको अवसर्पिणी का प्रथम चक्रवर्ती का जो अंगुल है, आत्मांगुल नहीं, प्रमाण अंगुल। आत्मांगुल तो बच्चों का अंगुल है, वो उसका आत्मांगुल है, है? अलग अलग जो जित की जितनी अवगाहना है उसका अंगुल का प्रमाण जुदा जुदा होगा, उसको आत्मांगुल कहते हैं। पर ये प्रमाण अंगुल यानी वो 500 गुना बड़ा होता है। उच्छेद अंगुल, उच्छेद अंगुल किसको कहेंगे, 8 यव का एक अंगुल कहने में आता है, उसको उच्छेद अंगुल कहेंगे। और ये वाला कौन सा है, प्रमाण अंगुल है। तो प्रमाण अंगुल से जो धनुष वगैरह बनाए गए सभी ऑर्डिनरी जो धनुष है उससे ये प्रमाण धनुष है वो 500 गुना बड़ा होगा। ऑर्डिनरी योजन से प्रमाण योजन है वो 500 गुना बड़ा होगा। इस तरह से उसका प्रपोर्शन आ जाता है। देखो राजवार्तिक के अंत में लिखा है, तन्वी मनोज्ञा सुरभि पुण्या परम भासुरा प्राग्भारा नाम वसुधा लोकमूर्ध्नि व्यवस्थिता नृलोकतुल्य विष्कम्भा सितश्छत्र निभाशुभा ऊर्ध्वं तस्याक्षितेः सिद्धा लोकान्ते समवस्थिताः। त्रिलोक के, ये सार लिखा है, त्रिलोक के मस्तक पर स्थित प्राग्भारा नाम की पृथ्वी है जिसको ईशत प्राग्भारा कहते हैं, जो तन्वी अर्थात स्थूलता रहित है। तन्वी किसको कहते हैं, हाँ पतली पुरुष, वो तन्वी हा? नहीं नहीं नहीं, तन्वी ने थिन जिसको डेलिकेट जिसको होते हैं ना, वो तो जो कृष ऐसी स्त्री होती है ना, कौन से इसको तन्वी कहते हैं, यानी स्थूलता रहित, क्योंकि वो कितने 8 योजन वाली है ना, पतली है, मनोज्ञ है, सुगंध युक्त है, पवित्र है तथा अत्यंत देदीप्यमान है। वह पृथ्वी नरलोक तुल्य विस्तार युक्त, नरलोक कहो मनुष्य लोक कहो, जो धाई द्वीप है 45 लाख योजन वाली है, श्वेत वर्ण के छत्र समान तथा शुभ है। कोई कोई कहते ऐसा ऊपर है, ऐसा उल्टा ऊपर कर्वेचर, ऐसा नहीं है, नीचे ही कर्वेचर है, ऊपर तो फ्लैट है। उस पृथ्वी के ऊपर लोक के अंत में सिद्ध भगवान विराजमान है। सकलज्ञ यानी सर्वज्ञ सिद्धों का निवास स्थल ही यथार्थ में ब्रह्मलोक है। धवल वर्ण युक्त निर्वाण स्थल में महाधवल परिणति युक्त परमात्मा का निवास पूर्णतया सुसंगत प्रतीत होता है। यानी उनके जो सिद्ध शिला है वो धवल वर्ण की है, और उनकी परिणति भी कैसी, महाधवल है। सिद्ध भगवान ने राग द्वेष मोहादि विभावों का त्याग कर स्वभाव की उपलब्धि की है, वे वीतराग हो चुके हैं। देखो हमने तो ये नियम पहले देखा, पहले पूर्ण वीतरागी होते हैं, बाद में सर्वज्ञ होते हैं। पूर्ण वीतरागी, कोई कषाय का अंश भी अभी नहीं बाका, यानी पहले पूर्ण निर्दोष होते हैं, फिर वो आवरण का नाश होता है, निरावरण होते हैं। किसी की स्तुति से वे प्रसन्न नहीं होते, वे निंदा से खिन्न ही नहीं होते, वे राग द्वेष की दुविधा के चक्कर से परे पहुंच चुके हैं। ऐसी व्यवस्था होते हुए मंगल गाथा में सिद्ध परमात्मा से प्रसन्नता की प्रार्थना का क्या रहस्य है, वो भी आता है ना सिद्धों की पूजा में, प्रसिद्ध विशुद्ध सुसिद्ध समूह, वो मेरे पर प्रसन्न हो जावे, यह विशेष विचारणीय है। यदि भगवान यथार्थ में प्रसन्न हो गए तो उनकी वीतरागता कहाँ रही, और यदि वे प्रसन्न न हुए तो प्रसन्नता की प्रार्थना अप्रयोजनिक ठहरती है। तो क्यों करते प्रार्थना, तो यथार्थ बात यह है कि प्रसन्न यानी निर्मल भाव पूर्वक प्रभु की आराधना करने वाला भक्त उपचार से प्रभु में प्रसन्नता का आरोप करता है। ये भक्तिवश ऐसी कहने की पद्धति है, वो कुछ देते नहीं, कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता। आचार्य विद्यानंदी आप्त परीक्षा में लिखते हैं, वीतराग में क्रोध के समान संतोष लक्षण प्रसाद की भी संभावना नहीं है। जो वीतरागी है वो क्रोध तो करेंगे कि नहीं करेंगे, क्रोध नहीं करेंगे तो कृपा दृष्टि तो रखेंगे कि नहीं रखेंगे, ये कहते हैं। क्योंकि वीतराग का है ना, वितराग का अर्थ ही क्या होता है, राग द्वेष से रहित हो गए अभी, ना भक्तों के प्रति उनके राग अनुराग है और ना कोई शत्रुओं के प्रति या उनका जो भक्तों का तकलीफ देने वालों के प्रति उनका कोई द्वेष है। तो लोगों को ऐसा लगता है ना, हमारे भगवान तो कुछ नहीं करते हैं, परंतु वो तो अस्त्र वस्त्र शस्त्र धारण करने वाले तो कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे, भगवान तो नहीं करेंगे, पर हमने बाकी बना के रखे ना शासन देवता है कुछ कुछ, वो तो आके रक्षण करेगी कि नहीं करेगी, हम आपका क्या कहना है? कोई किसी का कुछ कर नहीं सकता है। तो कहते अतः प्रसन्न अंतकरण द्वारा प्रभु की आराधना करना वीतराग की प्रसन्नता मानी जाती है। इसी अपेक्षा से भगवान को प्रसन्न कहते हैं, जैसे प्रसन्न अंतकरण पूर्वक रसायन का सेवन करके निरोग व्यक्ति कहता है कि रसायन के प्रसाद से मैं निरोग हुआ, उसी प्रकार प्रसन्न चित्त पूर्वक वीतराग प्रभु की आराधना से इष्ट सिद्धि प्राप्त कर, क्या इष्ट सिद्धि होती है? परीक्षा में पास होना है के धंधे में बरकत चाहिए, क्या इष्ट सिद्धि क्या होती है? हाँ, इसे सिद्ध भगवान ने जैसे स्वभाव कहा वैसा, ये हमारी इष्ट सिद्धि है। तो परमात्मा के प्रसाद से मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ, ये कहने की पद्धति है। इसी दृष्टि से वीतराग सिद्ध परमात्मा से प्रसन्नता की प्रार्थना की गई है। त्रिभुवन भवन पसरिय पच्छव बोह किरण परिवेदो वयोवीणवणो अरहंत दिवायरो जयो। उसका अर्थ, जो अरहंत भगवान रूपी सूर्य जयवंत हो, अरहंत दिवायरो जयो, जो तीन लोक रूपी भवन में फैली हुई ज्ञान किरणों से व्याप्त है। उसके किरण कहाँ तक फैले हैं? लोक लोक सब ज्ञान रूपी किरणें, ऐसे उस कुछ बाहर फैलता होगा ना, सबको जान लेते हैं। तो वो कहते, कल बात आई थी ना प्रवचन सार में, सर्वगत है ज्ञान है या आत्मा है, वो सर्वगत है, और सारे पदार्थ है वो आत्मगत है या भगवानगत है, ऐसे कल बात आई थी प्रवचन सार में, गाथा आई थी। तथा जो उदित होते हुए भी अस्त को प्राप्त नहीं होते, भावार्थ यहाँ अरहंत भगवान की सूर्य के साथ तुलना की है। सूर्य स्वपर प्रकाशक है। स्वपर प्रकाशक किसको कहते हैं? यहाँ जानने की बात नहीं है, सूर्य को कहा है, वो स्वयं प्रकाशित है और उसके निमित्त से बाकी भी चीजें सब देखने में आते, प्रकाशित हो जाती है। तो कहते हैं ये सूर्य उगा, ये कौन से टॉर्च लेके देखना पड़ता है? हाँ? नहीं ऐसे, ये जो जिनवानी है ना भगवान की, जो सूत्र रूप रचना हम ये जो हुई है रचना, उसको भी कहते कि स्वपर प्रकाशक है, स्वपर वाचक है, यानी उनके लिए और किसी के वो प्रूव करने की जरूरत नहीं, वो प्रमाण है। सूर्य स्वपर प्रकाशक है, अरहंत भगवान का केवल ज्ञान भी स्वपर प्रकाशक है। लोक प्रसिद्ध सूर्य की अपेक्षा अरहंत सूर्य में विशेषता है। लौकिक सूर्य जबकि मध्य लोक के थोड़े से प्रदेश को आलोकित करता है ना, प्रकाशित करता है। ऐसा क्यों कहा? अरे उसकी लिमिट है ना, कहां तक फैलेगा उसका प्रकाश, वो नीचे का और बाजू में कहाँ तक फैले, हर सूर्य की अपनी, क्योंकि हमने देखा ना यहाँ जम्बूद्वीप में तो दो है लवण समुद्र, ये बढ़ते बढ़ते पड़े आगे के कितने हैं, परंतु ये तो ढाई द्वीप तो मूविंग है, सभी सूर्य चंद्र स्टार्स जो है वो तो ढाई द्वीप में सारे और आगे सारे स्थित है, तो जहाँ पर है वहीं पर प्रकाशित है, और कितने तो अंधेरे के अंधेरे पट्टे के पड़े है वहां पर, तो लिमिट है ना उसके लिए। इसलिए कहते कि मध्य लोक का जो सूर्य है थोड़े से प्रकाशित को आलोकित करता है, अब वो मध्य लोक में है, सब जगह तो नहीं है। नरकों में कोई सूर्य है क्या वहां पर प्रकाश? और ऊपर भी देवों में भी नहीं है। अब वहां जो प्रकाश आता है वो अलग आता है। तो कहते कि थोड़े से प्रदेश को प्रकाशित करता है, और अरहंत सूर्य सकल विश्व को प्रकाशित करता है। सूर्य का उदय और अस्त होता है, किंतु केवल ज्ञान सूर्य का उदय तो होता है पर अस्त नहीं। यानी अनादि से केवल ज्ञान नहीं था, वो प्रकट हुआ। अभी एक बार केवल ज्ञान हुआ, अब फिर अभी संसार अवस्था में नहीं आने वाला, फिर अल्पज्ञ नहीं होने वाला, अनंत काल तक वो केवल ज्ञान चलेगा। जब कैवल्य का प्रकाश आत्मा में उत्पन्न हो चुका, तब उस सर्वज्ञ आत्मा की ज्ञान ज्योति को कर्म पटल पुनः कैसे ढाक सकेंगे? फिर दोबारा न उनके राग द्वेष होते हैं, न कर्ममल फिर आकर उनको चिपकता है। अतः केवल ज्ञान सूर्य उदय युक्त होते हुए भी अस्त रहित है, वह अनंत काल पर्यंत प्रकाशित रहता है। अनंत काल पर्यंत रहता है, उसका अर्थ क्या है? एक बार प्रकट हुआ, हो गया, अभी काम धाम कुछ नहीं रहा, जान लिया सब, अब पर्याय से रहित हो जाएंगे ना। तो हर समय एक पर्याय तो एक समय की होती, केवल ज्ञान केवल ज्ञान केवल ज्ञान केवल ज्ञान, एक एक पर्याय करके अनंत काल तक वो केवल ज्ञान ही चलेगा। इस तरह से कहा वो अनंत काल तक रहता है। अरहंत सूर्य की किरणें ज्ञानात्मक है, लौकिक सूर्य की किरणें पौद्गलिक है। उन्होंने सिद्ध और अरिहंतों के संबंध में अन्य अन्य जो ग्रंथों की कुछ गाथाएं प्रस्तुत कर दी है। आगे बढ़ते हैं, पांच नंबर पेज पर नीचे का जो गाथा है ना, तीन नंबर की, तिरयण खग निहाये नुत्तारिय मोह सैन्न सिरणि वहो आयरिय राउ पसियउ परिवालिय भविय जियलो। उसका अर्थ, जिन्होंने रत्नत्रय रूपी खड्ग के प्रहार से, खड्ग समझते हैं, मोह रूपी सेना के शिर समूह का नाश कर दिया है, यानी मोहनी का पूरा नाश हो गया है, तथा भव्य जीव लोक का परिपालन किया है, वे आचार्य महाराज प्रसन्न होवे। यहाँ आचार्य महाराज की राजा से तुलना की गई है, जैसे कोई प्रतापी राजा अपने प्रचंड तलवार से, तलवार के प्रहार से शत्रु सैन्य का नाश करता है, उसी प्रकार आचार्य परमेष्ठी सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान तथा सम्यक चारित्र रूपी अजेय खड्ग से, अजेय ने उसके कोई जीत नहीं सकता, मोह रूपी सेना के मस्तकों का नाश करते हैं। जिस प्रकार राजा अत्याचारी का अंत करके धर्म परायण प्रजा का रक्षण करता है, उसी प्रकार आचार्य महाराज मोह का ध्वंस करके भव्यात्माओं का रक्षण करते हैं। मोह के कारण संसार में भव्य जीव बहुत कष्ट पा रहे थे। कौन से कर्म के कारण कहा? किसी कर्म किसी ने कर्म ने नहीं कोई घुमाया है, तो हम आप जो कष्ट पा रहे हैं वो क्यों? अपने मोह राग द्वेष के कारण। और सारा उपचार कहाँ कर रहे हैं? संयोगों में, संयोगों को देख देख कर स्वयं इष्ट अनिष्ट मानकर मोह राग द्वेष कर रहा है। और उपचार कहाँ करता है? पर पदार्थों में करना चाहता है, उसकी तो चलती कुछ नहीं है, वो विकल्प के अलावा कुछ नहीं कर सकता है, फिर भी सारे विकल्प उसको पर को पलटाने में रहते हैं, और इस कारण वो नया नया विकल्प करता है, तो ये राग है तो बंद तो नया नया होता रहता है। तो कहते हैं अपने ही मोह के कारण ये भव्य जीव बहुत कष्ट पा रहे। आचार्य महाराज ने रत्नत्रय से अपनी आत्मा को सुसज्जित करके अपनी पुण्य अभयवाणी तथा जीवनदात्री लेखनी के द्वारा जो वीतरागता की धारा बहाई, देखो वो अपने में स्थित नहीं हो पाते तो सहज रूप से उनके भाव आता है कि ये बात सब जीव जाने, उससे भव्यात्माओं के अंतकरण में जो मोह का आतंक था वह दूर हुआ, और उन्होंने अपने निज रूप की उपलब्धि की, यानी अपने आत्मा का अनुभव किया। यह निमित्त रूप से आचार्यों की वाणी कही जाती है, भव्यात्माओं को जब भी मोह का आतंक व्यथा पहुंचाता है, तभी वे आचार्य परमेष्ठी के चरणों का आश्रय ले अभय अवस्था को प्राप्त होते हैं। अब चार नंबर, अन्नानयंधयारे अणोर पारे भमंत भवियाणम उज्जो जयिको पसियंत सया उच्छाया। जिसे सिद्ध भगवान, अरिहंत भगवान, फिर आचार्य भी उपाध्याय उनको नमस्कार करते हैं। जिसके ओर छोर का पता नहीं है, ऐसे अज्ञान अंधकार में भटकने वाले भव्य जीवों को जिन्होंने प्रकाश प्रदान किया है, वे उपाध्याय प्रसन्न हो गए। भावार्थ, यहाँ अज्ञान को अंधकार की उपमा दी गई है। जिस प्रकार चक्षुष्मान व्यक्ति, चक्षुष्मान यानी अंधा नहीं है, जिसको दिखाई देता है, हाँ, प्रकाश रहित स्थल में अंधे की भांति आचरण करता है। जैसे कोई निबिड़ अंधकार हो, बिल्कुल कोई प्रकाश की किरण नहीं है, और हम तो अंधे नहीं है, फिर भी अंधे जैसे हो जाते। उसी प्रकार सम्यक ज्ञान ज्योति के अभाव में जीव परद्रव्य को स्व मानकर, देखो क्या भूल हो रही है, सम्यक ज्ञान रूपी प्रकाश नहीं है। ऐसा तो संगी पंचेंद्रिय आंख वाला है, बहुत स्याना समझता है दुनियादारी में, क्या हो रहा है उसके, जीव परद्रव्य को स्व मानकर। आपने कौन से स्व परद्रव्य को स्व माना? हमने तो पैसे को नहीं माना, घर को नहीं माना स्व, कौन सा स्व को मान रहे, कौन से परद्रव्य को स्व मान रहे भाई, शरीर, शरीर परद्रव्य को स्व मानकर तथा आत्म तत्व को अनात्म पदार्थ मानकर, जो आत्मा नहीं है इसको मैं मान लिया अनात्मा, ने जो मैं स्वयं हूँ उसको तो देखा ही नहीं, माना ही नहीं, उसका अस्तित्व ही नहीं पहचाना, अंधे के समान प्रवृत्ति करता है। इस मिथ्या ज्ञान रूपी अंधकार के आदि अंत का पता नहीं चलता है, वह अपार है। अणु और पारे कहा था ना, और छोर का पता नहीं, उसमें भव्य जीव भटक रहे है और पर को अपना मानकर दुखी हो रहे। हमारा दूसरा कोई दुख नहीं, यही दुख है, ये मैं हूँ, फिर इसके लिए जो अनुकूल प्रतिकूल लगता है उसमें राग द्वेष तो होते रहेंगे। जो मैं हूँ उसको मैं मान लो, देखो दूसरा कोई राग द्वेष का तो कारण ही नहीं रहेगा। यह मिथ्या ज्ञान का ही प्रभाव है कि जीव कल्याण के मार्ग को न पाकर 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करता फिरता है। जैसे अंधकार में भटकने वाले जीवों को प्रकाश का दर्शन होते ही हित मार्ग सूझने लगता है, उसी प्रकार उपाध्याय परमेष्ठी के प्रसाद से सम्यक ज्ञान का प्रकाश प्राप्त होता है। हमें उनके द्वारा उपदेश मिलता है, इसलिए उनके द्वारा प्रकाश प्राप्त हुआ, ऐसा कहेंगे हम उसको। जिससे यह मोहांध प्राणी पंच परावर्तन रूप संसार का परिभ्रमण छोड़कर, ये 5 परावर्तन हमने देखे ना बहुत बार, द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भव परावर्तन और भाव परावर्तन, शाश्वतिक यानी कायम टिकने वाला शांतिमय शिवपुर की ओर उन्मुख हो जाता है, यानी मोक्ष की तरफ उसका मार्ग शुरू हो जाता है। उपाध्याय के समीप सविनय आकर भव्यात्माएं आगम का अभ्यास करती है और सम्यक ज्ञान का लाभ करती है। इस कारण अज्ञान अंधकार निवारण करने वाले उपाध्याय परमेष्ठी से प्रसन्नता की प्रार्थना की गई है। आज हम यही रुकेंगे। चावाणी के ज्ञान ते सूझे लो पालो सोवाणी हस्तकनम सदा देख।